रात के 11 बज रहे थे। नील अपनी गर्लफ्रेंड नितारा के साथ उसके घर गया था। शिवी घर पर अकेली थी तो उसने जिया को अपने यहाँ ही रोक लिया था, जबकि डिनर के बाद ईशान वहाँ से जा चुका था। जिया सो चुकी थी। शिवी को नींद नहीं आने की वजह से वो अभी भी करवट बदल रही थी। कमरे की लाइट बंद थी। नींद नहीं आने की वजह से शिवी दबे पांव बाहर हॉल में आई और लाइट ऑन की। वो वहां लगी डाइनिंग टेबल पर बैठ गई। शिवी तो इतनी बड़ी बेवकूफ़ी कैसे कर सकती है? सिर्फ उसके सामने ना आने के लिए तूने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया, जबकि अच्छे से जानती थी कि पापा की हियरिंग के लिए इंडिया जाना कितना ज़रूरी है। शिवी को खुद पर गुस्सा आ रहा था। अब तो भगवान से यही दुआ है कि जैसा सोचा है वैसा ही हो और वो मेरी शक्ल देखकर मुझे काम से निकाल दे। टेंशन के मारे नींद भी नहीं आ रही। शिवी वहां से उठकर फिर से कमरे में जाने लगी। तभी उसके पेट में गुड़गुड़ होने लगी। उसने पेट पर हाथ रखकर कहा, टेंशन के मारे खाना भी ठीक से नहीं खाया और अब फिर से भूख लग रही है। हे भगवान, पता नहीं क्या होगा मेरा। प्लीज़ इस बार कोई गड़बड़ मत कर देना, क्योंकि इस बार बात मेरी नहीं, मेरे पापा की है। उन्हें मेरी ज़रूरत है और उनके लिए मैं किसी तरह का रिस्क नहीं ले सकती। अपनी भूख मिटाने के लिए शिवी ने अलमारी में से कुकीज़ का पैकेट निकाला और वहीं बैठकर खाने लगी। वो उसे खा रही थी तभी उसके मोबाइल की रिंग बजी। इतनी रात को किसका फ़ोन आया होगा? शिवी ने फ़ोन चेक किया तो सिद्धांत का कॉल था। उसने तुरंत कॉल पिक किया। तुम्हें यही टाइम मिलता है क्या फ़ोन करने का? उसने फ़ोन उठाते ही कहा। हाँ, सही कहा, मैं जस्ट फ्री हुआ ही था तो सोचा तुम्हें कॉल कर लूँ, सिद्धांत ने हंसकर जवाब दिया। और क्या होता जो मैं सो गई होती? शिवी ने पूछा। होता कुछ नहीं, बस तुम कॉल पिक नहीं करती। वैसे मुझे पता था कि तुम्हें नींद नहीं आ रही होगी, तभी मैंने कॉल किया था। बोलते हुए सिद्धांत की आवाज़ थोड़ी गंभीर हो गई, तो वहीं उसकी बात सुनकर शिवी के चेहरे के भाव भी गंभीर हो गए। उसने शांत आवाज़ में कहा, 3 दिन बाद पापा के केस की हियरिंग है, ऐसे में मुझे नींद आ भी कैसे सकती है? ज़्यादा टेंशन मत लो, तुम्हें देखने के बाद अंकल अपना डिसीजन बदल लेंगे। वो तुमसे बहुत प्यार करते हैं, तुम्हारे लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। फिर इस बार तो काम भी मुश्किल नहीं, वैसे तो मार ही हो ना? सिद्धांत के पूछने पर शिवी ने कुछ पल रुककर जवाब में कहा, अभी तक तो यही प्लानिंग है, लेकिन मुझसे गड़बड़ हो गई। हाँ हाँ, ये तो होना ही था। जहाँ तुम होती हो वहाँ कोई गड़बड़ ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है मिस अय्यर? अब जल्दी बताओ क्या किया है ताकि उसका सल्यूशन ढूंढने में मैं तुम्हारी हेल्प कर सकूँ? सिद्धांत ने हल्के तरीके से पूछा। अब क्या बताऊँ, बहुत लंबी कहानी है, शिवी ने अपने बालों में हाथ घुमाकर कहा। कोई बात नहीं, मेरे पास बहुत टाइम है। इंडिया में अभी 6:30 बजे, ऑफिस टाइम वैसे भी खत्म हो गया है। घर कभी भी जाओ, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो तुम अपनी लंबी कहानी काफी टाइम लेकर सुना सकती हो, सिद्धांत ने हंसकर जवाब दिया। उसके हाथ में कॉफी मग था और सामने टेबल पर काफी सारी फाइल्स बिखरी थी। तुम फिर कहोगी कि मुझे दूसरों के फटे में टांग डालने की क्या जरूरत थी, पर मैं खुद को रोक नहीं पाती। ऐसे लगता है जैसे मुसीबतें चलकर मेरे पास नहीं आती, बल्कि मैं उन्हें आवाज़ देकर अपने पास बुलाती हूँ। उसे सब कुछ बताने से पहले शिवी ने अपने दिल की बात उसके सामने रखी। ये सच भी था, वो सबकी हेल्प करने के चक्कर में खुद को किसी न किसी मुसीबत में डाल लेती थी और फिर उससे जान छुड़ाना उसके लिए मुश्किल हो जाता था। तुम्हें इतनी एक्सप्लेनेशन देने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें कॉलेज टाइम से जानता हूँ और तुम्हारी इस प्रॉब्लम से भी अच्छी तरह वाकिफ हूँ। अब चलो बताओ इस बार क्या हुआ। कुछ दिन पहले मैं एक रेस्टोरेंट में गई थी जहाँ पर एक हद से ज़्यादा अमीर इंसान मौजूद था। अब अमीर है तो रॉकी सी बात है कि घमंड और एटीट्यूड तो उसमें कूट कूट कर भरा होगा। बस उसी से थोड़ी बहस हो गई और उसने गुस्से में उस रेस्टोरेंट को ख़रीद लिया। मैंने अपनी तरफ से डील कैंसिल कराने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन फिर भी डील हो गई। बस इतनी सी बात, सिद्धांत ने कॉफ़ी का सिप लेते हुए कहा। कोई रेस्टोरेंट खरीदे या बेचे उसमें तुम्हें क्या, इस दुनिया में 700 करोड़ से भी ज़्यादा लोग हैं और वो किसी न किसी तरह की प्रॉब्लम से जूझ रहे होते हैं। ज़रूरी नहीं कि तुम जाकर सबकी हेल्प करो। हाँ, सही कहा, लेकिन प्रॉब्लम ये नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि मैंने MBA में टॉप किया था। शिवी आगे की कहानी सुनाती उससे पहले सिद्धांत खुशी से जोर से चिल्लाया, क्या सच में? तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुमने MBA टॉप किया है? और ये प्रॉब्लम की बात थोड़ी ना है पागल, ये तो खुशी की बात है। पहले पूरी बात सुन तो लो, शिवी उसे आगे बताते हुए बोली। यूनिवर्सिटी में जिस स्टूडेंट ने टॉप किया है उसे एक अच्छी कंपनी में प्लेसमेंट मिल रहा है। मुझे भी मिला, बट अनफॉर्चुनेटली वो कंपनी उसी अकड़ू इंसान की थी जिससे कुछ रोज़ पहले मेरी बहस हुई थी। बात यही खत्म नहीं होती, जल्दबाजी में मैंने प्लेसमेंट के लिए कॉन्ट्रैक्ट भी साइन कर दिया था। सारी बात सुनने के बाद सिद्धांत बोला, हाँ, अब मैं कह सकता हूँ कि तुमने बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर ली है। लीगल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर निकलना आसान काम नहीं होता। हाँ, अगर वो खुद से तुम्हें इस कॉन्ट्रैक्ट से आज़ाद कर दे तो बात अलग है। बस इसीलिए मैं परेशान हूँ, कल उसकी कंपनी में जाऊँगी और उसे कह दूँगी कि मुझे नहीं चाहिए उसकी प्लेसमेंट। वैसे भी मुझे इंडिया आना है, कहीं ना कहीं मुझे भी यही लगता है मेरी शक्ल देखने के बाद वो मुझे काम से निकाल देगा। शिवी ने अपनी उलझन को सिद्धांत के सामने रखा।
आई विश ऐसा ही हो। इस बार तुम्हारा इंडिया आना बहुत जरूरी है। इस बार फाइनल हियरिंग है। अगर इस बार भी अंकल ने अपने गुनाह को जज के सामने कबूल किया तो उन्हें सजा हो जाएगी। केस तो पिछली बार ही खत्म हो जाता, पर तुम नहीं जानती मैंने कितनी मुश्किल से फैसले को नेक्स्ट हियरिंग तक आगे बढ़ाया है। लास्ट टाइम मुझे कोर्ट में खुद की तबीयत खराब होने का दिखावा करना पड़ा, सिद्धांत ने बताया। बस इन सब की वजह से मुझे नींद नहीं आ रही। एक बार कल की मुसीबत टल जाए फिर सब ठीक हो जाएगा। कुछ देर इधर उधर की हल्की फुल्की बातचीत करने के बाद सिद्धांत ने फोन कट कर दिया। उससे बात करने के बाद शिवी को अच्छा महसूस हो रहा था। वो एक लंबे दिन के बाद काफी थक भी गई थी, इसलिए वहां से सीधे सोने के लिए चली गई। सुबह के 6 बज रहे थे। आर्य ओबेरॉय मेंशन पहुंचा। वो उस दिन पार्टी में हुए तमाशे के बाद से ही घर नहीं आया था। उसके दादाजी मिस्टर विक्रम सिंह ओबेरॉय के अलावा किसी को उसके वहां होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ऐसे में किसी ने उसके बारे में ज्यादा कुछ पूछा भी नहीं। आर्य अपनी गाड़ी पार्क करके ऊपर पहुंचा तो उसे अपनी फैमिली मेंबर्स में से कोई दिखाई नहीं दिया। थैंक गॉड कोई नहीं है, वरना सुबह सुबह मूड खराब हो जाता, आर्य ने खुद से कहा और ऊपर अपने कमरे में जाने लगा। कमरे में जाते वक्त उसे सामने से कैरिन आती हुई दिखाई दी। उसे देखने के बाद उसका चेहरा उतर गया। ये यहीं पर रह रही है क्या, उसने खुद से पूछा। कैरिन ने जब देखा आर्य उसी की तरफ देख रहा है तब उसने हल्की मुस्कुराहट दी। आर्य ने अपना चेहरा घुमा लिया और उसे इग्नोर करके अपने कमरे में बढ़ने लगा। उसके कोई रिस्पॉन्स नहीं देने पर कैरिन तेज कदमों से चलती हुई उसकी तरफ आई। हे आर्य, हमें बात करना चाहिए, कैरिन अपनी टूटी फूटी हिंदी में बोली। मुझे नहीं लगता हमारे दोनों के बीच कुछ ऐसा है जिससे हमें बात करनी चाहिए। तुम मिस्टर ओबेरॉय की गर्लफ्रेंड हो और मेरे लिए इतनी वजह काफी है तुमसे नफरत करने के लिए, आर्य ने अपने गुस्से को काबू में करके जवाब दिया। वो कमरे में जाने लगा तभी कैरिन ने हाथ पकड़कर उसे रोका। आई डोंट नो मिस्टर ओबेरॉय और तुम्हारे बीच में क्या प्रॉब्लम है, आई वॉन्ट कि तुम दोनों के बीच सब ठीक हो जाए।
ओ रियली, यू रियली वॉन्ट कि हम दोनों के बीच सब ठीक हो जाए, आर्य ने उसका हाथ धीरे से अपने हाथ से अलग किया। यस, कैरिन ने हामी भरी। ठीक है फिर, ऐसा करो कि अपना सामान बांधो और जहां से आई हो वहीं चली जाओ, आर्य ने सख्ती से जवाब दिया। ये नहीं हो सकता, अगर तुम अपने गुस्से को इग्नोर करो तो हम दोनों के बीच चीजें अच्छी हो सकती हैं। आई नो तुम मुझे एक्सेप्ट कर लोगे, कैरिन की बात सुनकर आर्य हल्का सा हंसा। उसकी हंसी में भी उसका गुस्सा झलक रहा था। उसने उसकी बात का जवाब देते हुए कहा, हमारे बीच में कभी कुछ अच्छा नहीं हो सकता, ये बात कभी मत भूलना। और दूसरी बात, तुम यहाँ जिस हैसियत से आई हो उसके बाद मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, यही बड़ी बात है। अपनी बात कहकर आर्य अपने कमरे में चला गया। कैरिन ने फिर भी हार नहीं मानी, वो उसके कमरे में आ गई। उसे अपने कमरे में देखकर तो आर्य का गुस्सा सातवें आसमान पर था। उसके कमरे में आने की इजाज़त किसी को नहीं थी, यहाँ तक कि घर पर काम करने वाले हाउस हेल्पिंग स्टाफ को भी नहीं। गेट लॉस्ट, आर्य उस पर गुस्से में चिल्लाया। कैरिन ने कमरे का दरवाज़ा बंद किया और आर्य के पास आई। उसने आर्य को दोनों कंधों से पकड़कर उसे दीवार पर लगा दिया और वो उसके बिल्कुल पास थी। मैं ज्यादा घुमा फिराकर बात नहीं करूंगी, आई लाइक यू, तुम बहुत डिफरेंट हो, कैरिन अपने होंठ आर्य के होठों के पास लाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन आर्य ने उसे खुद से दूर धकेल दिया। आर्य ने आगे कुछ नहीं कहा और कैरिन का हाथ पकड़कर उसे कमरे से बाहर निकाल दिया। उसने दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। गुस्से में कैरिन पैर पटकते हुए वहां से चली गई। आर्य वहां से बाथरूम में गया और अपना मुंह धोया। मतलब हद होती है, एक तो मेरी माँ की मौत के बाद में पता नहीं किस किस को उठाकर यहाँ लाकर पटक दिया, ऊपर से ये तो टू मच था। उस दिन क्या कब तमाशा हुआ था जो ये यहाँ पर अपने प्यार का इजहार करने मेरे कमरे में घुस गई। मिस्टर ओबेरॉय को इस बात का पता चला तो उसमें भी वो मेरी गलती निकालेंगे, उनके लिए दुनिया में हर होने वाली प्रॉब्लम के लिए मैं ही जिम्मेदार होता हूँ, आर्य खुद को सामान्य करने की कोशिश कर रहा था। वो नहा धोकर बाहर आया। आर्य ऑफिस जाने के लिए तैयार हुआ और वहां रखा अपना बचा कुचा सामान दो सूटकेस में पैक कर लिया। उसकी अलमारी अब बिल्कुल खाली थी। इस जगह से जितना जल्दी पीछा छूटे उतना ही अच्छा है, आर्य ने खुद से कहा और दोनों सूटकेस को एक साथ अपने दोनों हाथों से घसीटते हुए नीचे लाया। नीचे उनका पूरा परिवार नाश्ते की टेबल पर बैठा था। वो लोग लंदन में भले ही रह रहे थे परंतु उसके पिता मिस्टर आशुतोष सिंह ओबेरॉय भारतीय होने का अच्छा खासा दिखावा करते थे। वो परिवार को एक साथ रखने और एक साथ खाना खाने जैसी चीजों को बहुत वैल्यू देते थे। आर्य को वहां देखकर आशुतोष अपनी कुर्सी पर बैठे बैठे ही बोले, तुम रात को यहीं पर थे क्या, किसी ने बताया क्यों नहीं, बोलते हुए उन्होंने घड़ी की तरफ देखा और आगे कहा, तुम्हें तो अच्छे से पता है कि स्ट्रिक्टली 8:30 बजे सबको ब्रेकफास्ट के लिए डाइनिंग हॉल में आना होता है। पर खैर छोड़ो, मैं भी किसे कह रहा हूँ जिसे हर वक्त अपनी मनमानी करनी होती है। आर्य ने उनकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। उसने एक नज़र कैरिन की तरफ देखा जो इस तरह नाश्ता कर रही थी जैसे कुछ देर पहले कुछ हुआ ही नहीं था। किसी ने उसकी तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन विक्रम जी ने उसे सूटकेस के साथ देखा तो वो अपनी जगह से खड़े हुए और उसके पास गए। तुम घर छोड़कर जा रहे हो, तुमने वादा किया था कि जब तक मैं जिंदा हूँ तुम यहाँ से नहीं जाओगे, आर्य को सूटकेस के साथ देखकर वो काफी दुखी हुए। सोचा तो मैंने भी यही था,
पर अब अपना डिसीजन बदल लिया। आप चाहो तो मेरे साथ सेटल हो सकते हो, आर्या ने काफी नरमी से कहा। विक्रम सिंह जी उसकी बात का कुछ जवाब दे पाते उससे पहले आशुतोष गुस्से में बोल पड़े, तुम्हें जहां जाना है जाओ, लेकिन पापा यहां से कहीं नहीं जाएंगे। पापा घर के सबसे बड़े हैं और इस घर को उनकी जरूरत है। उनकी बात सुनकर आर्या के चेहरे पर तंज भरी मुस्कुराहट थी। उसने जवाब में कहा, हाँ, जैसे किसी को उनके यहाँ होने से फर्क पड़ता है। आशुतोष ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। आर्या ने फिर अपने दादाजी की तरफ देखकर कहा, दादू, मैं आपके जवाब का इंतजार कर रहा हूँ। इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने कहा ना, पापा यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। तुम अपना और हमारा टाइम वेस्ट मत करो, तुम्हें जहाँ जाना है तो जा सकते हो, विक्रम सिंह जी के बजाय आशुतोष ने जवाब दिया। आर्या ने विक्रम सिंह जी की तरफ देखा, उनकी नजर झुकी हुई थी। वो चाहकर भी आर्या के साथ नहीं जा सकते थे। आर्या को उसका जवाब मिल चुका था। उसने आगे कुछ नहीं कहा और गुस्से में दोनों सूटकेस घसीटते हुए वहां से जाने लगा। उसके वहां से जाने पर किसी के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे, मानो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था सिवाय विक्रम सिंह ओब्रॉय के। उनकी आंखों में आंसू थे।